है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।
ओम शांति। कहानी है जिसमें तीन अनाथ बच्चे होते हैं ए बी सी। एक अनाथ आश्रम में तीन बच्चे होते हैं ए बी सी, अमन बमन चमन। उस अनाथ आश्रम में रहते हैं तो अमन जो होता है वो बहुत सीधा और शांत स्वभाव का होता है। बमन जो होता है वो थोड़ा चालाक किस्म का होता है, दूसरे का उपयोग करता है, शोषण करता है। और एक चमन होता है जो तो और घातक होता है, दोनों पर भारी होता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि तीनों का एडॉप्शन होना रहता है, तीनों को एडॉप्ट करने वाले माता पिता आने वाले होते हैं। तो तीनों जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि आज मंदिर जाते हैं। तो तीनों जो हैं वो मंदिर जाते हैं। अमन जो होता है वो भगवान के सामने प्रार्थना करता है और धन्यवाद का भाव प्रकट करता है कि आपने जो जीवन दिया है ये बहुत अमूल्य जीवन दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो भी जीवन की आगे की यात्रा है वो आपके हवाले, अब आपको देखना है कि भविष्य क्या होगा, बस इतना करता है। और कुछ पैसे लेके आता है वो अपने साथ, 5 रुपये जेब में कि भगवान के भंडारे में डाल दूंगा। लेकिन वो क्या होता है कि वो पैसा जो है वो बमन बी नंबर का वो निकाल लेता है उसके जेब से और वो डाल देता है भंडारी में भगवान की, उससे छीन के उसमें डाल देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने ये दिया है आपको तो आप भी इसके बदले मुझे ऐसे माता पिता देना कि जहां मैं अच्छे से रह पाऊं। तो जो चढ़ावा चढ़ाते तो उधर चढ़ा देता है 5 रुपये उसका चुरा के दूसरे का। और जो तीसरे टाइप का होता है तो और घातक होता है, चमन। ये तो और भंडारी से जो रखे रहते हैं पैसे वो सारे समेट के बोले भगवान को क्या जरूरत है, रख लेता है जेब में अपने और बस ऐसा करके तीनों वापस लौटते हैं। तो जब वापस लौटते हैं तो एक रास्ते में एक उनको साधु मिलता है जो नंगे पैर चले आता है, जिसके पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते, चप्पल नहीं है जिसके पास। तो अमन जो होता है वो बोले वो अपनी चप्पल उसको उतार के दे देता है। तो ये दोनों उसको रोकते हैं, तो पागल हो गया क्या करेगा तू, कैसे चलेगा पैर, उसको दे देगा। तो बोले, तब वो बोलता है अमन के भगवान हमको, भगवान को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हमारे कर्मों से कुछ देता है, हम कुछ भी भगवान को कुछ चीज थोड़ी चाहिए, वो हमारे कर्मों से हमको देता है। तो हमारा कर्तव्य पड़ता है कि हर एक आत्मा से प्रेम आंतरिक चाहिए। तो ऐसा कह के उनको समझा के दे देता है। बोले, तू पागल हो गया है, इस दुनिया में दानी धर्मात्मा नहीं चलते ज्यादा दिन। और इतना होके सारे चले जाते हैं, तीनों का एडॉप्शन हो जाता है, सारे अपने अपने उनको माता पिता मिल जाते हैं, तीनों अनाथ को सनाथ हो जाते हैं। वो जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम भी अनाथ थे, कहाँ पढ़े थे, दोजक में थे, डस्टबिन में पड़े थे, उठा के बाबा ने गोद दी अपनी। तो ऐसे तीनों का एडॉप्शन हो जाता है, तीनों चले जाते हैं। करीबन 20-25 वर्ष बाद फिर जो अमन होता है वो एक टैक्सी से नीचे उतरता है और देखता है कि वो दो दोस्त उसके सामने ही बैठे हैं, चाय के ठेले के सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो मिलता है जाके, अरे तो हाल चाल पूछते हैं। तो जो चमन होता है वो बताता है अपने हाल कि क्या हुआ बाद में। बोले, जो मुझे एडॉप्ट करने वाला था ना, वो बहुत शराबी किस्म का था और कर्जदार था। वो मुझे अडॉप्ट करके ले आया, एक फैक्ट्री में इतना कर्जा ले लिया कि उधर मुझे आजीवन काम करना पड़ रहा है और पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ रहने और खाने को मिलेगा। और बमन अपनी कहानी सुनाता है कि मैं, मुझे जो माता पिता ने अडॉप्ट किए वो उसी फैक्ट्री में जहां चमन है, उसी फैक्ट्री में, चमन तो पीयून है, मैं उधर एम्प्लॉय हो गया क्योंकि मेरे जो पिताजी थे उधर एम्प्लॉय थे, तो मैं उधर काम करता हूं। अब उससे पूछते हैं अमन से कि तू क्या करता है, तेरी हालत तो अभी भी वैसे ही दिख रही है, लगता है तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, हम लोग तो जैसे तैसे कुछ कर लिए। तो बोलता है कि नहीं, मैं तो एक शाम को एक पार्टी है, सिप का ये VIP पास लो आप लोग दोनों लोग, और शाम को पार्टी में आना, फिर अपन वहीं बैठ के बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी अभी आया हूं मैं। तो वो तीनों एंट्री करते हैं सिप पार्टी, रॉयल लोगों की, बोले गरीब लोगों की पार्टी सिप में होती है, तो गरीब नवाज हूं मैं, तो आ जाना तुम लोग दोनों। तो उनको पास देता है, एंट्री पास। तो उन लोग शाम को जाते हैं, एक टेरेस में खड़ा होता है अमन, दोनों तीनों दोस्त मिलके ऊपर टेरेस में रहते हैं। सिप में तो फ्लोर होते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, तो तीसरे फ्लोर में खड़े रहते हैं। तीनों बात करते हैं, बोले ये पार्टी किस चीज की है। बोले आज ये पार्टी तो दोनों को पता होता है, जिस कंपनी में उन दोनों काम करते हैं, बमन और चमन, अमन नहीं, बमन और चमन जिस कंपनी में काम करते हैं। बोले ये तो हमारे मालिक की जो फैक्ट्री है ना, मालिक है जो हमारा, उसकी पार्टी है। तो आज बोर्ड और डायरेक्टर नया सेलेक्ट होने वाला है, इसलिए इधर पे पार्टी हो रही है, इसका तो इनविटेशन था ऑलरेडी हमारे पास। तो जब वो अनाउंस होता है जो डायरेक्टर नया बनने वाला होता है, तो जो पुराना उसका मालिक होता है वो अनाउंस करता है कि आज मैं सारा कारोबार अपने बेटे के उस पर नाम पर ट्रांसफर करता हूँ, वो अभी अभी विदेश से लौटा है, बाहर से। तो वो लौटा है तो सारा उसके नाम पे कारोबार ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। और जो वो फैक्ट्री होती है वो चप्पल जूते बनाने की बड़ी कंपनी होती है, तो वो उसका नाम लेते हैं अमन, अमन हमारा नया वो रहेगा डायरेक्टर उस कंपनी का, जहां पर वो एम्प्लॉय था और एक वो प्यून था। तो कहानी में ये समझ में आता है कि जो भी प्रलाभ हमको मिली है वो हमारे कहीं ना कहीं किससे मिली है, कर्मों से। जैसा हम कल का स्लोगन था ना, वृत्ति से, वृत्ति से हमारा निर्माण होता है वाइब्रेशन का, और वृत्ति से कर्म से हमें जो है प्रलब्ध मिलती है। कि बाबा भी कहते हैं ना कि तुम्हारे बोल बहुत ऊंचे हो चल, वो कोई वैल्यू नहीं है उसका, लेकिन तुम्हारे कर्म महान होने चाहिए। माने हमारे कर्म और बोल में अंतर नहीं देखना चाहिए। कल उन कल था ना कथनी करनी दृष्टि वृत्ति और बोल, तीनों में अलौकिकता बोला बाबा ने। तो कर्म से भगवान जो बोलता है कि कर्मों से प्रत्यक्ष होगा, तो इसमें तीनों में कर्म है। तो ये जो टॉपिक है, फिर वो चमन अमन से पूछते हैं, बमन और चमन, कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, तुम इतने बड़े व्यक्ति के घर में कैसे आ पहुंचे। बोले उस दिन जिस दिन अपन मंदिर गए थे, उस दिन जो वो धनी व्यक्ति था, जो मालिक था, वो भी मंदिर गया था और भगवान से उसने दुआ मांगी थी कि मुझे कुछ, मुझे, मैं आज एडॉप्शन करने जा रहा हूँ, बच्चे को गोद लेने जा रहा हूँ, तो हे भगवान मुझे ऐसा बालक देना जो हितकारी हो, जो मेरे वंश को आगे अच्छे से नाम वाला कर सके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा देना मेरे। और वो इतना कह के मंदिर से बाहर निकल रहा था और अमन को देखा उसने कि अपनी चप्पल वो दूसरे को दे रहा। तो फिर वो जाके हॉस्टल में जाके और वो उसके बारे में पता करता है, तो वो बोलता है कि ये अनाथ बच्चा है, उस हॉस्टल में रहता है अनाथ आश्रम में, और उधर जाके वो उसको गोद लेते हैं कि यही बच्चा चाहिए हमको। तो कहानी इसके पीछे ये बैकग्राउंड होता है। ऐसे ही हम, हमारे कर्मों के अनुसार बाबा हमको गोद लिया है। हम वास्तव में वो गुप्त गुप्त बात है कि मतलब हम ये नहीं किसी को शो ऑफ करने के लिए कर्म ना करें, मतलब अंदर जैसे भावना रहती है, जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही भाग्य बनता है, कहते हैं ना, जैसी जिसकी भावना वैसा उसको भाग्य का फल मिलता है। तो ये तीन, तो हम इसको टॉपिक को तीन पार्ट में लेंगे, ए बी सी, अमन भवन चमन। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि इस यज्ञ में अमन टाइप के कौन बच्चे हैं, बमन टाइप के कौन बच्चे हैं। क्योंकि जब वो अपनी हिस्ट्री बताता है तब वो कहता है कि अब तुम मानो चाहे ना मानो, बात यही सत्य है कि कर्म के अनुसार भाग्य मिलता है। बमन और चमन उससे पूछते तो अमन कहता है तुम मानो या ना मानो, अब मानो या ना मानो, भाग्य ऐसे ही बनता है। तो आप जो टॉपिक है वो क्या है अपना, अब मानो या ना मानो। तो अब वो बच्चे, तीन कैटेगरी के बच्चे देखेंगे जो बाबा के फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी। तो पहले आज के उसमें पहला लेंगे क्योंकि समय उतना नहीं है, तो पहले की सात क्वालिटी निकाली है। क्वालिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन सात क्वालिटी निकाली है। तो पहले आप लोग बताओ कि ए क्वालिटी के बच्चे होंगे उनमें क्या विशेषता होगी। कमलेश भाई क्या होगी, निखिलेश भाई तो नहीं, यही कर्म है भाग्य बनाने का। अभी क्या क्वालिटी होगी उनमें, भाई भाई की दृष्टि आप विठल भाई हर से तुम कराएंगे क्यों क्या के चक्कर, प्रश्नों से पार होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। और आपका एक बताओ, ईमानदार वफादार फरमान बरदार। आपका आपके पास आ रहे देवेंद्र भाई जी, दातापन की भावना, रैम दिल, अब पूरा मददगार, बिल्कुल पहले सात पॉइंट निकालें। पहला जिसमें है रोंदू, नहीं होंगे वो रोंदू, रोंदू एक्यूरेट होंगे हर चीज में, चाहे ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवाओं में, हर चीज में एक्यूरेट, अलर्ट, एक्यूरेट, अलर्ट और एवर रेडी। सारे जितनी ऐसे बाबा ने बोले हैं सारे उसमें वैल्यू होंगे, एवर रेडी भी होंगे। कल बाबा ने बोला था ना, क्या है विशेषता ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है, सादा एवर रेडी, ना बाल बच्चे याद आए, ना कोई आए, ना वैभव, ना कोई भी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सदा एवर रेडी। तो उनमें रौंदुपन नहीं होगा कि आलस अलबेलापन नहीं करेंगे कि ये बाद में कर लेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे कोई भी चीज को, जो करना है मतलब करना है, उसमें अलबेलापन नहीं आएगा, टाइम के पंक्चुअल होंगे वो, क्योंकि जिसको अपने समय की वैल्यू होती है वो दूसरे के समय की कदर कर सकता है, जो खुद ही आलस अलबेलापन में पड़ा हुआ है वो दूसरे की क्या मदद करेगा। और भगवान ने कहा कि तुम तो विश्व की नैया, तुमको पाल लगानी है, खुद की नैया डूबी हुई है तो कैसे पाल लगाएंगे तैसे। तो पहला रौंदू नहीं होंगे, दूसरा रौंदू, रौंदू जो होते हैं आलसी, रौंदू मतलब जो वो बैल होता है जिसको बहुत मारना पड़ता है, कौड़े की मार तब चलता है वो, दूसरा रोएंगे नहीं, परिस्थिति बिघन कैसी भी समस्या आ जाए। किसी ने कहा है कि बदतर सिचुएशन में बेहतर कर जाना, ये है निशानी सफल व्यक्ति की, बदतर, बदतर से बदतर कंडीशन हो और उसमें बेहतर कर जाना, ये है महान व्यक्ति की विशेषता। ये नहीं कि हमको सिचुएशन अच्छी मिले तब हम कुछ करें, सेंटर अच्छा मिले या हमें परिस्थितियां अच्छी आए, सेवा अच्छी मिल जाए, थोड़े बड़े डिपार्टमेंट में कोई इंचार्ज बन जाऊं, अरे बदतर सिचुएशन में ही बेहतर बना जा सकता है। तैराक वो कहलाता है जो दिशा के विपरीत तैर के जाने, बहाव में तो मुर्दा भी चला जाता है बह के, तैरने वाला तो वो है जो जब विपरीत दिशा में तैरे, जिस तरफ धार ना हो उस दिशा में। तो हम दुनिया के कौन से सिलेक्टेड बच्चे हैं भगवान के, दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें किस तरफ जाना है, पवित्रता को असंभव समझते हैं दुनिया के लोग, और बाबा ने हमको क्या है दिशा ही मोड़ दी, दिशा दशा सब मोड़ दी, नहीं तो उस दुनिया में क्या थी, दुर्दशा थी, डूबे हुए थे, दुबन में पड़े थे, बिल्कुल दुर्दशा, गए के गए थे। बाबा ने कहा ना बिल्कुल बाल बचा था तुम्हारा, एक बाल उससे खींचा है बाबा ने तुमको, वो भी हाँ थोड़ा सा बचा था बाल, डूबा ही हुआ था नैया, नैया तो डूबा ही हुई थी। तो बेहतर बदतर सिचुएशन में भी बेहतर कर जाना, रोएंगे नहीं। अब ब्राह्मण कैसे, अब ये तो हुई बाहर की और इधर की बात, अब ब्राह्मणों के अंदर भी रोना होता है जब कोई सिचुएशन आ जाती है, पर चलो सामने नहीं रोएंगे लेकिन अकेले में रोएंगे, बाथरूम में दरवाजा बंद करके रोएंगे। अरे रोना ही है तो बाप के सामने रो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रोना, कि कोई व्यक्ति मिल जाए बताने के लिए, शेयरिंग के लिए, केयरिंग के लिए। बाबा ने कहा ना चेयरफुल और केयरफुल, अरे हिम्मत रखना है, चेयरफुल हिम्मत होगी उनके पास, और सावधान रहना है परिस्थिति तो आएंगी, चेयरफुल भी रहो केयरफुल भी रहो, अपनी इतना भाव नहीं बह जाओ कि भावना में आके अपनी सेवा का बैलेंस ही बिगाड़ लिया हो। रोना वहां पड़ता है जब हम हिम्मत हार जाते हैं कि ये नहीं हो रहा तो रोने लगे, कोई परेशान कर रहा है तो रोने लगे, या अपनी किसी तीसरे व्यक्ति को बना के रखा है दोस्त उसके सामने रोएंगे, इधर ऐसा हो रहा है ये हो रहा है, शेयरिंग किसी व्यक्ति से अगर करेंगे ना तो परिस्थिति से पार का ऑप्शन नहीं है वो। अगर रोना ही तो भगवान के सामने रहो, बाबा के सामने रहो। कोई आंसू पहुंचने वाला कैसे है बाबा, लेकिन अगर आप देखें तो जीवन में अगर भगवान के सामने जो रोया है ना, जीवन में उसको कभी दोबारा रोने की जरूरत नहीं पड़ी है, और उसके सामने परिस्थिति कैसी भी आ जाए, विघ्न बाधा कैसी भी आ जाए, अगर उसके सामने अगर तुम गए तो सिचुएशन का हल ना हो ये हो नहीं सकता। क्योंकि समर्थवान का समर्थवान है बाबा, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। जब हम कॉलेज में थे तो ऐसी कंडीशन आ गई कि पैसे, लास्ट डेट थी, फीस पेड करनी थी, नहीं तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाता। ऑलरेडी दो साल, तीसरा लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर था, तो पैसे नहीं थे अकाउंट में, कुछ भी पैसा नहीं था, और इस जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। और उस सिचुएशन में ऐसी आ गई कि अब तुमको मांगना ही पड़ेगा, और इसका अहंकार था हमको कि हमने आज तक किसी से नहीं मांगा, भले कुछ भी कर लिया लेकिन अहंकार था उस चीज का, किसी के हाथ हाथ नहीं फैलाएंगे। तो कभी कभी अपनी क्वालिटी का भी अहंकार आ जाता था, तो बाबा उसका भी टेस्ट लेता है। इस चीज का अहंकार था कि आज तक हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज नहीं फैलाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि कहीं से कोई कुछ नहीं, घर से तो दूर ही रहते थे, तो लॉकेट से थोड़ा कांटेक्ट कम था, और अपने उस पर अकेले ही पढ़, क्योंकि घर वालों ने बहुत किया था, फीस बहुत जमा की थी, तो उस समय हमने सोचा कि अब हमें क्या है रास्ता। तो बाबा को याद किया और अंदर से ये कंडीशन आ गई कि 3 साल पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा हमारा, जो आज तक 20 साल से जो पढ़ाई की, पूरा एजुकेशन सिचुएशन ये थी कि खत्म हो जाता। तो हमने कहा बाबा अब क्या करें, और जबकि कई भाई बहनों ने बोल के रखा था, वो जानते थे स्टूडेंट है, थोड़ा सेंटर में जाते थे, तो वो बोलते थे कि कभी जरूरत पड़े ना तो हमसे बोलना तुम पैसे के लिए। तो याद आया कि धरत पर ये धर्म ने छोड़िए, पहले तो लगा कि इससे मदद ले लूं, उससे ले लूं, तो हमने कहा कि पहले बाबा से मदद लो, बाबा क्या करता है, उसका क्या प्लान है, वो देखते हैं। तो बाबा को याद किए सही, जाते जाते साइकिल चलाते चलाते फॉर्म भरने जाना था, तो मैंने कहा कोई तो ऑप्शन रखेगा, बाबा पर निश्चय रखना चाहिए, अभी तो परीक्षा है। बोले हैं उसने हमारी परीक्षा बहुत ली, अब वो भी परीक्षा दे, मदद करता है कि नहीं, बोला तो है। तो जा रहे थे तो पहले तो आया ख्याल इनसे मांग, इनसे, लेकिन नहीं। फिर बाबा ने बोला, मैंने सोचा सेंटर जाके देखता हूँ, सेंटर जाता हूँ, रास्ते में सेंटर पड़ता था उस फील्ड में, तो सेंटर गया, सेंटर में बैठा, हिम्मत तो नहीं पड़ी बहन जी से कुछ बोलने की, बैठा सेंटर में, बाबा को याद किया। तो बहन जी ने पूछा, सहरे से तो तुम्हारे लगता है 12 बजे हो गए, तो ऐसा लगता है कि निमित्त जो भी रहता है ना, वो उस समय जब हमारे साथ परिस्थिति आती है ना, जो व्यक्ति आता है वो स्वयं भगवान आता है, हमें व्यक्ति विशेष दिखता है भले है, लेकिन वो स्वयं भगवान की वाणी होती है, और वो स्वयं परख लेता है उस समय कि क्या इसको चाहिए। तो पहले तो वो बहन हमको बोलती है कि लगता है तुम भूखे हो, और ये वास्तविकता रहती कि सुबह से शाम का समय हो जाता है 4 बजे तक, और उस समय नाश्ते कुछ भी खाया बनाया नहीं था, क्योंकि सुबह से निकल जाते थे कॉलेज। तो पहले बहन जी अंदर जाती है और वो गरम गरम खाना बना के खिलाती है, और जैसे ही वो खाना खाते हैं तो आंखों से मतलब आंसू बहने लगते हैं कि भगवान सब चीज जानता है। पहले खाना खिलाया, फिर बहन जी ने प्यार से बैठा के पूछा, परेशानी क्या है? हमने बोला, दीदी ये लास्ट सेमेस्टर है और फीस मेरे पास नहीं है, अब तो या तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा या कुछ बहुत कुछ होगा। तो बोले, कितनी फीस चाहिए? मैंने कहा 750 रुपये। उस समय कुछ प्रोग्राम रहता है, थालियों में कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, तो बहन जी, ये तो यज्ञ के विरुद्ध है किसी को पर्सनल हेल्प करना, लेकिन जैसा भी उनने फील किया हो, तो उनने क्या है बहुत सारे पैसे जोड़ के ले आए अंदर से 750 रुपये, और मेरे हाथ में दे दिए, बोले ये लो। तो जब वो पैसे दिए तो अंदर से यही चल रहा था कि भगवान सब जानता है, और तो वो तो फिर बहन अंदर जाती है, भोजन खत्म होता है, पैसे भी दे देती हैं, सारी सिचुएशन, अंदर जाती हैं और तभी एक उदरी प्रतिज्ञा पत्र लिख जाता है कि आज के बाद जो भी इस पढ़ाई का रिजल्ट मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये जो पढ़ाई कर रहा हूं इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा ये होगा कि दुनिया में इस एजुकेशन का उपयोग नहीं करूंगा, जो भी करूंगा तेरी सेवा में करूंगा, क्योंकि आज तूने डिग्री देने का किसका कौन आधार बना, भगवान बना। तो उस दिन जो प्रतिज्ञा हो जाती है मन ही मन कि ये जीवन बाहर की दुनिया वालों के लिए नहीं रहेगा, ईश्वरीय कार्य के लिए रहेगा, और इतना कह के चले जाते हैं। लेकिन अंदर से आत्मग्लानी होती है कि ये तो गड़बड़ है। यज्ञ के विरुद्ध उस बहन ने भी नहीं पूछा, और उस बहन की सेंटर किराए से चल रहा, अपना किराया निकालना उसको बहुत मुश्किल, उसने भरोसा किया किस ब्याह पे हमको दे दिया, हमें तो ज्यादा दिन हुए नहीं थे आए, किस भरोसे पे उसने भरोसा कर लिया। तब ये किया कि बाबा कुछ कर ना पाए चाहे कुछ ना कर पाए, लेकिन इतना हो जाए कि इस बहन को अच्छा सेंटर दे देना, अगर मेरा दिल साफ है तो मेरी मुराद हासिल करना। तो जब पढ़ाई खत्म होती है, सारी चीजें खत्म होती हैं, तो बहन को सेंटर खुद का मिल जाता है, खुद का पर्सनल, और छोटा मोटा नहीं, वो बहुत बड़ा सेंटर होता है, अपन ने तो कुछ किया नहीं होता। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब मानो या ना मानो बात तो सत्य है, वो भगवान कहता है ना, भगवान कहता है कि वो हर सिचुएशन हर मन की, वो तुम्हारी मन को रीड नहीं करता है, मन को रीड नहीं करता है, तो क्या करता है, कैसे समझ लिया, कैसे उसके पास पहुंच जाता है। जब तुम बच्चे किसी मुरली में बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे संकल्प बस करते हो ना, मेरे उधर दिखने लगता है टीवी में, बाबा की टीवी में तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ना वो दिखता है। जब इस चीज में अगर देखा जाए, जब हमारे थॉट कैसे वो करते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की एक बुक है जिसमें उसमें बताया कि यू आर द मास्टर योर थॉट इमोशन एंड रिएक्शन, मतलब आप अपनी जो रिजल्ट आने वाला है परिणाम के मालिक हो, कर्म के मालिक नहीं बोला उसने, परिणाम के मालिक हो कि आप क्या चाहते हो वैसा होने लगेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए इमोशन, बहुत इमोशन। जब बाबा से आप बहुत डीपली इमोशन में जुड़ जाते हो तो आपको शक्ति महसूस होती कि नहीं होती, लगन में मगन कहते हैं जिसको, वही तो है अवस्था, लगन में मगन। जब आप उसकी लगन में, ऐसा नहीं कि स्वार्थ भाव की लगन में, कुछ चाहिए तो उसमें लगन में मगन होंगे कि बाबा ये चाहिए, तो वो बच्चे जो भगवान कैसी भी सिचुएशन दे दे लेकिन भगवान का हाथ ना छोड़े, वो है सेकेंड फर्स्ट क्वालिटी की आत्मा। कितनी भी परेशानी आ जाए, बाधा विघ्न आ जाए, तूफान आ जाए, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि जब एक किसान है फलदायक वृक्ष बोता है तो उसको पहले मिट्टी में दबाना पड़ता है, लेकिन वो ही वृक्ष फलदायक बनता है जो मिट्टी फाड़ के बाहर निकल जाए। पार ना, परिस्थिति तो आएंगी ना, लोग तो बोलेंगे तुमको, दबाएंगे, क्या है कि एक व्यक्ति है अनाज, अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुरी चीज तो ऑटोमेटिक आ जाती है। एक माली है वो, उसको फूल लगाना पड़ता है, लेकिन कांटे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। एक किसान फसल बोता है, बीज बोता है, लेकिन वो फल के साथ उसके साथ जो घास है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं करता। तो बुराई अच्छाई में जब हम बढ़ते हैं तो बुराइयां ऑटोमेटिक आती हैं, लेकिन अच्छाइयों के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहते हैं ना कि एक मूली अभी इसके पहले थी, चढ़ती कला उड़ती कला, वास्तव में दो ही कला है, चढ़ती कला गिरती कला। इस ब्राह्मण जीवन में आप अगर चढ़ाई है, बाबा ने कहा चोटी है, ब्राह्मण चोटी है मतलब चढ़ाई में, आप गाड़ी फोर व्हीलर अगर चल रही है चढ़ाई में और दो के से बीच में बंद हो जाए तो क्या होगा, उसका क्या होगा, पीछे आएगी ना, उतरती कला शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पुरुषार्थी जीवन में आप सोच रहे हो कि स्टेबल है, डेली हमारा 4 बजे उठ रहे हैं, अमृत वेले कर रहे हैं, तो मतलब हमारी चढ़ती कला है न, चढ़ती कला नहीं है, इसमें दो ही कला हो सकती है, पुरुषार्थ में आगे ही बढ़ेगा व्यक्ति या पीछे गिरेगा। अगर आप ठहर गए हो तो ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ पुरुषार्थी दोनों सड़ जाते हैं। इस मार्ग में पानी जो बहता रहे वही शुद्ध रहेगा, जो हमारे पुरुषार्थ है वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन अमृत वेला किया दूसरे दिन सोए पड़े, ये चलता चढ़ती कला वाला पुरुषार्थ है क्या? गिरती कला है ना, एक दिन तुमने खाया, एक दिन बनाया, दूसरे दिन खाया, खा के खत्म हो गया ना। पुरुषार्थ में उपवास अगले दिन। तो ये है तीसरी क्वालिटी है जो इस पुरुषार्थ के मार्ग में उनमें जुनून होगा, पैशन, उठते बैठते एक ही चीज होगा, करना है मुझे, क्या करना है। आज सिर्फ एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आमन टाइम पूरे। हाँ, ये तीसरा जो है, दूसरा था, पहला था रोएगा नहीं, रोंदू नहीं होगा, दूसरा रोएगा नहीं, तीसरा जुनून होगा, पैशन, बिल्कुल जोश में होश में रहेंगे वो। आर्मी में व्यक्ति कैसा होता है, इधर देखो, आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, जब ट्रायल होता है, ट्रायल आर्मी की बात कर रहे हैं, एनसीसी में ज्वाइनिंग जब हमारा हुआ था, तो पहला दिन जिस दिन सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देने था उनको, उस दिन पहले बोला 5 किलोमीटर राउंड लगाओ, सिर्फ एप्लीकेशन। हम तो अच्छे कॉलेज का ड्रेस था, ब्लेजर था, सारे सूट बूट था, बोली तो सिर्फ इतना आर्ग्यू कर दिया सर, चेंज ड्रेस चेंज कर लो, ट्रैक सूट पहनना पड़े। बोले आर्ग्यू क्यों किया, बेंड हो जा, बेंड हो जा मतलब लेट जा, तुरंत पनिशमेंट, नो आर्ग्यूमेंट, जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा, आर्मी का ये रूल्स होता है। जो बोला बोला 5 किलोमीटर राउंड लगा, लाट लगा दे, बाबा भी ऐसे ही बोल दिया ऐसा करने का, करने का, उसमें नो आर्ग्यूमेंट। जब आर्मी में ट्रेनिंग होती है तो बहुत घातक होती है ट्रेनिंग, आप अगर 5 मिनट 1 मिनट भी लेट पहुंचे ना तो 5 किलोमीटर राउंड लगवाते थे, फिर एंट्री करते थे फाइल में एंटर। और अगर थोड़ा भी तुमने एक शब्द भी, बहानेबाजी तो चलती नहीं उधर पे, उनने बोला है कि 3 बजे आना है, मतलब आना है, आप काले जो जेट सिक्योरिटी होती है ग्वालियर में, काला ग्राउंड, काला पानी जिसको बोलते, काला पानी, काला ग्राउंड, जो बड़े बड़े बीआईपी या जेट फोर्स होती है बॉडीगार्ड, हाँ, उनको 20 किलोमीटर एक दिन में दौड़ना होता है, और सब खाने पीने के लिए 5 मिनट का समय मिलता है, पूरा टाइमिंग उनकी फिक्स होती है, नहाने के लिए इतना टाइम, खाने के लिए इतना टाइम, और ये सारी चीजें करने के लिए इतना टाइम, ड्रेसअप, और सारी चीजें एक्यूरेट होने चाहिए, शूज पॉलिश सेविंग सारी, कोई भी चीज अगर थोड़ी भी डिफेक्ट है बैंड हो जाओ। इधर पे हम ट्रायल में हैं, ऐसा हमारे रूम में ट्रायल में हैं हम, अरे ट्रायल में तेरी कंडीशन इतनी है कि अमृत वेला कब गया था ये भरोसे नहीं तेरे को, अरे मोचरा खा के मानी पति पाएगा पिछाड़ी में, सुधरा डंडा खा के तो क्या मतलब का सुधरा तू। ऐसा जब छोटे थे हम तो स्कूल नहीं जाते थे, एक बार क्या हुआ कि कोई आया था रिलेटिव, उसने बहुत उसको देख रहा था कि इसकी माता जी बहुत संघर्ष करती है, मेहनत करती है, फीस खर्च करती है, और ये स्कूल नहीं जाता है, डीट था बहुत, स्कूल के टाइम गायब, कहाँ गायब होता था, शाम को लौटता था। तो उसने उस दिन पकड़ लिया और उसने बहुत मारा, कमरे में इतना बंद करके मारा, क्योंकि कोई नहीं था घर में, हम अकेले थे स्कूल नहीं गए, तो उस अकेला पाया दरवाजा करके तब तक मारा जब तक हमने हाँ नहीं बोली कि हाँ हमको स्कूल जाना है, नहीं तो आज तक हम कितना भी पिट जाते थे कभी स्कूल नहीं जाते थे, एक बार ना मतलब ना, उसने हाँ करवा दिया, लगातार 4 घंटे तक हमको बहुत मारा, हर एक अंग अंग दर्द कर रहा था, और मैं ऐसी कंडीशन में पूरे लाल पीले होके स्कूल लेके गया वो हाँ बुलवा के। तो ऐसा ही यहां पर भी है, अब तुमको अपनी मर्जी से जाना है कि लाल पीले होके जाना है। लाल पीले होके जाना है या अपनी मर्जी से जाना है वो तुम्हारे ऊपर है, डिसाइड यू। जब ट्रायल में है हमारा कंडीशन इतना, सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में होता है व्यक्ति तभी तो अपने आप को जैसा मोल्ड करना चाहे तभी तो कर सकता है ना। दूसरे पे दोष देंगे, खुद से मेहनत नहीं हो रही, ऐसे लोग वो दूसरे को दोष ही करते हैं। क्या कहते हैं, अरे इधर बड़े बड़े भी तो करते हैं। अरे बाबा ने कहा महारथी कौन, जब वो अपनी स्थिति पे हो वो महारथी है, तो दूसरे को कॉपी करके क्यों डूबता है, अपना भाग्य क्यों गवाता है? उसको देख के आया था क्या? किसको देख के आया आप इधर पे, किसको देख के आया? और इधर आके बाबा को भूल गए, दूसरे को देखना शुरू कर दिया। उनके अंदर जुनून होगा, कि कहते ना अल्बर्ट एडिशन जब अपने दोस्त को इनवाइट करते खाने के लिए, तो अपने लैब में इतना डूबा हुआ होता है कि वो दोस्त आके बैठा है, 6 घंटे हो गए उसको बैठ के, वो अपने लैब ही में कमरे में बंद है, वो निकला ही नहीं रहा बाहर, वो झांक के देखता है कि कब फ्री हो और खाना खाएं और जाएं हम। तो वो क्या करता है कि देखता है, फिर 6 घंटे इंतजार करता है, नहीं निकलता बाहर, वो खा के खाना रखा रहता है, खाता है थाली में और जूठे बर्तन छोड़ के चला जाता है, ताकि उसको याद हो कि भाई वो आके खा के चला गया। वो निकलता है बाहर और घड़ी देखता है, और इस टाइम तो हो गया, भूख भूख समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैंने खाया कि नहीं खाया ये होश नहीं उसको। बोले जाके किचन में देखता हूँ, देखता है बर्तन जूठे पड़े, अरे इसका मतलब मैंने खा चुका हूँ। अरे इतना होश नहीं रहेगा, जुनून जज्बा है बिल्कुल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी शादी में जाने भूल गए, इतना लैब में व्यस्त थे, शादी नहीं हुई, शादी में जाना भूल गए। सोचो मतलब कैसा उनकी लगन, तब उसने अग्नि की उड़ान लिख पाए, तब उसने बल्ब की खोज की पाई, ऐसा जुनून जज्बा। इधर तो शादी में छोड़ो, इधर आने के बाद ख्याल आता है कि अरे शादी कर ली होते, ऐसा सोचते हैं लोग। तो अब मानो ना मानो बात ये सत्य है। आगे तीसरा पॉइंट है, चौथा अगला है जो क्या रहेगा अगली और क्या रहेंगे, नंबर वन आत्माएं, मैं पन नहीं होगा बिल्कुल, मैं की बलि चढ़ा दी होगा। बाबा ने आप पूरी अव्यक्तवाणी आप उठा के देख लो, किसी भी अव्यक्तवाणी में मैंपन अगर कहीं यूज किया है तो मैं करना, तो मैं महान आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसके अलावा मैं का उपयोग कहीं नहीं करना। हनुमान जब जाता है सीता के पास, तो सीता पूछती है कि मुझे कैसे विश्वास हो तुम कौन हो, वो बोलता है मात्र जानकी करुणा निधान की, मात्र जानकी करुणा निधान की, मेरा परिचय इतना है कि मैं श्री राम का सेवक हूं और उनकी आज्ञा प्रमाण मैं आपके पास आया हूं, मेरे पास सिर पर यह मुद्रिका दी है, इससे आप अपनी शंका का समाधान कर ले। हनुमान ने ये नहीं बोला मैंने फलाना धमाका इसको सुरसा मारी, लंकिनी मारी, हैं, स्वयोजन का समुद्र पार करके आया, फिर आया थे समर्पित हो गए, मैं इधर दुनिया में मैं भी कम नहीं था, मैं ये किया हूं, मैंने भगवान के लिए वो किया, अहंकार अभी भी, मैं फलाना था, मैं इसमें था, अरे एक से एक लोग इधर पड़े हुए हैं बाजू में, हम अचानक एक दिन पूछ लिए एमटेक वाला, एमटेक है वो, कभी बताया नहीं कुछ भी, एक दिन देखा उसका मोबाइल में तो एमटेक डिग्री, और कहां कहां प्रेस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है, बिल्कुल निमित्त। बहुत ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि जिनकी सैलरी लाखों रुपए में थी, गवर्नमेंट जॉब थी, कभी जिक्र नहीं किया इस चीज का कि मैं ये था मैं वो था, ये तो वास्तविक हनुमान कौन है, मैं तो सेवादारी हूं, नॉर्मल मैं सेवादारी हूं। एक डॉक्टर को हमने देखा लॉकिंग, एक पेशेंट उस गवर्नमेंट जॉब तो अलग है उसका, और वो पार्ट टाइम सिर्फ आधे घंटे बैठता है, एक पेशेंट को देखने की फीस 5,000 रुपए, सिर्फ वो 1 मिनट देखता है, और वैसे डॉक्टर तो अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं। इधर आके देखो, बाबा ने कहा वैराग्य की भूमि है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है ना। क्या कोई एक आप सुशील भाई टाइपराइटर, एक स्टेनोग्राफर कितना होता है, हाई कोर्ट में जॉब होती है स्टेनोग्राफर, एक मिनट में 80 वर्ड लिखता है। ऐसे नहीं कि इधर भी कोई आम व्यक्ति बैठा हो, एकोमोडेशन संभालने वाला कितना होता है, टोली डिपार्टमेंट, जर्नी फूड करने वाला कोई साधारण व्यक्ति होगा, आर्ट डिपार्टमेंट कोई कौन था वो जिसकी एक पेंटिंग 10 सेकंड में बनाता था, करोड़ों रुपए मिलते थे, क्या नाम था उसका, निकलेश भाई, वो इधर ही बैठे हैं ना। कहां कहां मिलेंगी ये महान आत्माएं, कहीं ना कहीं जब हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं ना, तब भूल सब, तब हमें विस्मृति हो जाती है कि हम क्या है। तो समय तो होगा पड़ा है बस। हाँ, चौथा क्या है, मैं अपन बिल्कुल खत्म हो जाने, मैं तो बिल्कुल, मैं सरेंडर मतलब गर्दन अड़क। बाबा ने कहा कि बलि एक बार जो बलि चढ़ जाए ना वही स्वीकार होता है, एक बार में, दो बार उसको तलवार नहीं लगनी चाहिए, ऐसा लौकिक में होता था, अखंडित माना जाता था कि दो बार में किसी की गर्दन अलग हो रही, एक बार में गया मैं मतलब गया, अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो कुछ हूं तेरा हूं, जो भी रहा हूं दुनिया में, अरे उधर भी रहे हो तो उसी की बदौलत है, कोई अपनी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी इतनी कि तुम कुछ कर जाते। जुनून होगा उनमें चौथा, और पांचवा होगा निश्चय नशा निशाना। जब एक व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है, साल में एक बार पीता है, फिर क्या है लत बढ़ती है, 6 महीने में एक बार पी रहा है, 3 महीने में एक बार पीता है, 1 महीने में एक बार पीता है, 1 हफ्ते में पीता है, डेली पीने लगता है, नशा बढ़ता है। और इधर जो A1 क्वालिटी की आत्मा होंगी उनका नशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा, नशा बढ़ेगा, निश्चय बाबा पे अटूट होता जाएगा, क्योंकि उनके अनुभव बढ़ते जाएंगे। जब इस मार्ग में अंदर व्यक्ति बढ़ते जाता है ना, वो अपने अनुभव के आधार पे ही बढ़ेगा, निश्चय उसका अपने अनुभव के आधार पे ही होगा, कुछ भी कर लो तुम, कितना भी सुना दो उसको ज्ञान, जब तक वो अनुभव नहीं करेगा, वो अनुभव कोई भीख में मिलने वाली चीज नहीं है, अनुभव करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, विदेही बनना पड़ेगा। विदेही की एक नई परिभाषा अभी कहीं हमने पढ़ी, जब आपको कोई आत्मा अच्छी प्रशंसा करे आपकी, तब आप कितने स्नेहयुक्त व्यवहार, खुशी खुशी, तू तो अपना है हमारा, कैसा व्यवहार, और जब कोई गिलानी करे तो, जब तुम उसको स्नेह दे पाओ, वो है विदेही अवस्था। ये कैसी नई परिभाषा, ये ज्ञान कहां से आया, कैसे आया दुनिया में ये ज्ञान, शायद इसकी वैल्यू हमको पता नहीं, तभी हमें नशा ठंडा हो जाता है। कैसा बाबा कहता है, उस सेना में गारंटी नहीं है, कम बम ब्लास्ट हो जाए मर जाओ आप, यहां गारंटी है तुम्हें, और फिर भी भरोसा नहीं, क्योंकि शब्दों में गए नहीं ना, घुसा नहीं, ऊपर ऊपर तैर रहे, ऊपर ऊपर मछलियां मिलनी है, अंदर जाओगे जब रतन मिलेंगे। अगला है क्या रहेगा, क्या हो सकता है छठ, श्रीमत, ऐसे शब्द बताओ जो थोड़े समझ में आए लोगों को, जो थोड़ा समझ में आए साधारण लोगों को, क्योंकि हम 5G के जमाने के, वो रुकेंगे नहीं, अथक होंगे मतलब, अभी लॉकडाउन में 5G लॉन्च कर दिया दुनिया वालों ने, रुके क्या वो, इधर पे ब्राह्मण बैठा सेवा करेंगे, लॉकडाउन खुले तब कुछ करेंगे, योग करेंगे, भट्टी करेंगे, ये करेंगे प्लान, अरे लॉकडाउन के बाद तो फिर टाइम मिल जाए अपने पुरुषार्थ के लिए तो देख ले, लोग बैठे हैं, हमें अभी 10-15 दिन लगातार 4-5 दिन से फोन आ रहे हैं, जिनको ओम शांति नाम से ना उतनी गालियां देते थे हमको भरसक, वो कहते हैं ओम शांति, पहले फोन करके कहते हैं ओम शांति और बोलो हमें कब कोर्स कब कराओगे, कोर्स हमें चाहिए और मधुबन कब घुमाओगे, आप जो मधुबन की बात करते थे वो घूमना है, टाइम नहीं मिलेगा। 25 साल तक हमें याद है कि 25 साल तक जिन्होंने बहुत परेशान किया माता जी को, पूरी लौकिक फैमिली को थल पथल मचा दी, 25 साल तक बड़ा संघर्ष किया, सारी प्रॉपर्टी छीन ली, सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ किया उनने, बड़ा परेशान किया रात दिन। वो सिर्फ एक वजह से कि तुम ये ज्ञान छोड़ दो, इस वजह से उनने परेशान किया। लेकिन माता जी अटल और अडोल बोले दुनिया छोड़ देंगे, ज्ञान नहीं छोड़ेंगे, जो तुमसे बन पड़े कर लो। और वो थोड़ा हाईली प्रोफेशन, सारा परिवार उनके साथ, माता जी अकेली, सब कुछ उनका छीन लिया, सारी चीजें सब कुछ है उनके पास, वकील है, सारी चीजें सब सुविधाएं सब थी, लेकिन अकेले माता जी ने उनको हिला डाला। अब वो भगवान का काम था, वो तो वही जाने, वो उसको कुछ कराना था अगर। और ये सारी चीजें 25 साल तक देखने के बाद हम ज्ञान में आए, पहले तो हम बाबा शब्द ही से बहुत वैराग्य था। तो लास्ट है जो सातवां, पवित्रता। कल बूढ़ा बोला ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्योरिटी, उनका सबसे ज्यादा अटेंशन उसी में रहेगा। बाबा ने कहा ना कि सारे गुण आने हैं तो पहले पवित्रता को बढ़ा लो। तो 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, 100 दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुमको 100 साल तक याद रखे। बाबा ने कहा ना कि 63 जन्मों तक तुम किस पूजनीय रहोगे, सिर्फ प्योरिटी के आधार पे। नाम मान तो साइड है ब्राह्मणों के लिए, वो तुच्छी चीज है, पैरों के धूल है, धन वैभव पोस्ट पोजीशन ये ब्राह्मणों के लिए साइड की चीजें हैं। अरे लास्ट समय आएंगे चरण धो के पियेंगे लोग, क्या उसी में फंस जाओगे क्या? अरे दुनिया में छोड़ के क्या 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 सारी चीजें थी लोगों के पास, कोई चीज की कमी नहीं, सिर्फ एक चीज की प्यास है पवित्रता की, आत्मा की, उसके अलावा कुछ उसको नहीं चाहिए, ना आपका वैभव चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी मोटर कार कुछ नहीं चाहिए। अभी हम एक फोन आया था लॉकडाउन में, सेंटर में कुछ वैसा नहीं था, वो भाई बहुत कम जाता था लेकिन था, उसको पवित्रता से बहुत लगाव था, ज्ञान, वो ज्ञान ही बहुत था। तो लॉकडाउन में सारे जो रेगुलर आने वाले हैं लोग, उनने सेंटर जाना बंद कर दिया। बहन जी की हालत खराब, गंभीर, कि कोई नहीं आ रहा, और जो वो था रियल, उसने अपना कार बेच दिया, अपना सारी चीजें बेच दी, उसकी 2 बाइक थी वो बेच दी, पूरा अकाउंट उसने खाली कर दिया, पूरा अपना सारा सब कुछ समेट के और यज्ञ में सुहा कर दिया। ये सुन के हमारी मतलब अंतरात्मा हो गई कि अपना सब कुछ ये है त्याग, और उसको नशा टपारी नशा, उसको जो तो इधर बिन रोंदू टाइप के चल रहा है भगवान के पास हेडक्वार्टर में बैठ के, हैं कब मानोगे तुम? तो ये था साथ, बाकी आगे बी टाइप और सी टाइप की तो थोड़ी, जब ए टाइप की क्वालिटी देखो कितनी महान होती है, बी टाइप और सी टाइप आगे वाले पार्ट। अच्छा, और माया इधर भी होती है बोलते समय, ये भी माया है कि इस समय ज्ञान सुना भी रहे हो आप भगवान का, शायद कहीं ना कहीं आप जो अंदर से आवाज निकलनी चाहिए ऐसा नहीं लगता कि वो, क्योंकि बाबा साथ होना चाहिए कंबाइंड, कल कहा ना कंबाइंड स्वरूप की स्मृति होगी तो क्या होगी, वही सीट पे सेट रहेंगे, सदा संपन्न वही है। बाबा ने कितनी सारी बातें कल रूहानी पर्सनालिटी की बताई, ब्राह्मण जीवन में किन 3 चीजों में अलौकिकता होनी चाहिए, किन 3 चीजों में अलौकिकता, दृष्टि वृत्ति बोल, इनमें अलौकिकता चाहिए, और 3 बातें क्या चीज नहीं वेस्ट करेगा, वो 3 चीज वेस्ट नहीं करेगा, और तीन तीन योगी तपस्वी आत्मा की तीन विशेषताएं बताई बाबा ने, क्या थी? संतुष्टता के पहले, संतुष्टता वो होगा जिनमें तीन क्वालिटी होंगी। नैन चैन, चलन चेहरा, इनसे संतुष्टता दिखाई देगी उसके, उससे सर्व प्राप्तियां होते हुए भी वो किसी में नहीं अटकेगा, भरपूर रहेगा सदा संपन्न, उसके उससे नहीं दिखेगा ये चाहिए, अरे स्थूल चीजों के लिए आए क्या इधर, सारी चीजें वो कर दी तुमने, इतना सारा छोड़ दिया और इधर थोड़ी सी चीजें। अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, गुलाब जामुन कुछ बट रहा था उधर पे, एक भाई आया, माता जी को आदेश था कि एक से ज्यादा देने का नहीं, और एक भाई को दो चाहिए था तो एक दे दी, माता जी ने बोला एक ही का आदेश है मेरे को, बोला तुम मेरे को जानती नहीं, मैं दो दो, अरे तू दाल का अपना पुरुषार्थ दाव पे लगा दिए गुलाब जामुन में, कितनी बात है, तो बातें बहुत हैं। अच्छा समय भी हो गया है, ओम शांति।